तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है।
ओम शांति। हम सभी और आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है। 7 बिलियन इस वक्त मनुष्यात्माएं सृष्टि पर विचरण कर रही हैं। उनमें से हम कुछ आत्माओं को भगवान ने स्वयं चुन लिया, ढूंढ लिया, अपना बना लिया। हम शिव बाबा के बच्चे बन गए, सपूत बन गए। कहां कहां भटक रहे थे और हमें वहां से निकाल लिया, चुन लिया, सिलेक्शन कर ली। तो फिर क्या किया? ये बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान ने अपना बनाया। ये बहुत बहुत बड़ा भाग्य, इतनी बड़ी दुनिया में से हम चुने गए। तो उससे और बड़ा भाग्य कौन सा है? इससे नेक्स्ट दूसरा है कि फिर हमें किसी कार्य में लगा दिया। सुन लो, अपना मददगार बना दिया। हम सभी कौन है? आप सभी कहते हैं 600 भाई आए हुए हैं, तो 600 भाई सेवा केंद्रों पर रहते हैं या सेवा केंद्र के पूरे मददगार है, समर्पण है। तो हमें अपना बहुत नजदीक का बना लिया। ये बहुत बहुत बड़ा, और ही किसी काम आ गए हम, भगवान के किसी कार्य में लग गए, उसके मददगार बन गए। तो बताइए अपनी कितनी महिमा होनी, अपने कितना अपने को थपथपाना चाहिए, कितना ऊंचे, कितने ऊंचे कार्य में हम लग गए। ये रियलिटी है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। हम कौन है? वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड, भगवान के मददगार हैं। आप बताइए, हम सभी, आप जो बैठे, हम सभी वी आर हिज हेल्पर्स, भगवान के। बताओ, खुदा कहता है, वो दुनिया कहते जो खुदा की, जो अपनी मदद करता है खुदा उनकी मदद करता है, और हम तो खुदा के मददगार हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। हम किसके मददगार हैं? खुदा के मददगार, भगवान के मददगार हैं। शिव बाबा की संतान होकर उसके मददगार बने हुए, उसकी बुझाएं हैं। बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, वो गोवर्धन पर्वत को उठाया तो जो जिसने उंगली दी, तो हम वो उंगली देने वाले उसके साथी हैं। वी आर देयर हिज कंपेनियंस, उसके साथी हैं। बहुत बड़ा भाग्य। तो हम भी ऐसे आपकी तरह आज से 55 वर्ष पहले, बोलिए, बहुत समय बीत गया, हमें नहीं मालूम था कि अभी हमें ऐसा अनुभव सुनाना पड़ेगा। किसी को ये थोड़ा पता था कि बाबा चले अव्यक्त हो जाएंगे, इतना बड़ा ये सब कुछ होगा। हम तो कहा चले, उस वक्त भी ऐसा लगता था विनाश हुआ क्या हुआ, जैसे अभी लगता है ना, सच्ची रियली। उस वक्त भी हम जब बाबा के बच्चे बने, ऐसा लगता था कि बस फटाफट अभी विनाश होगा, हम जाएंगे। वो जो गीता में है ना, मच्छरों माफिक सभी आत्माएं उसमें मेरे मुख में आ रही हैं, हम सब मच्छरों माफिक जो आत्मा है भाई, जो स्टार, हम भी साथ बाबा के साथ मम्मा के साथ चले जाएंगे। यहां कौन रहेगा? ये दुनिया तो रहने लायक है नहीं। उस वक्त 1957 था हम जब आए थे ज्ञान में, आप शायद पैदा भी नहीं हुए कोई लोग। तो उस वक्त 57 में हम आए, हमें वो 1857 में लड़ाई हुई थी ना, 1857 में हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लड़ाई हुई थी वो गदर मानते स्वतंत्रता की लड़ाई। हमने कहा वही 100 साल बीत गया, फिर लड़ाई होगी। ये मुझे तो ऐसा फील होता था कि अब चले बाबा के साथ, हम कभी कोई ख्याल नहीं था इतना लंबा चलेंगे हम, 55 साल बीत जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। कभी सोचा नहीं कभी हमने, कभी किसी को ख्याल तक नहीं आया कि बाबा अव्यक्त हो जाएंगे, मम्मा भी चली जाएंगी, ऐसे हो जाएगा। किसी को ख्याल नहीं आता था, पता नहीं हमारे बड़ों को ख्याल, हमें तो नहीं आता। हम लेकिन भोले थे बहुत। हम जब ज्ञान में आए थे हमारी आयु 20 वर्ष की थी और बाबा उस वक्त 80 साल के थे। आप बताओ, यानी 60 साल का अंतर था। तो कैसे साथ साथ चलेंगे भाई, शरीर तो फिजिकल तो है नहीं है, लेकिन ये नहीं मालूम था उनका इतना बड़ा लंबा थोड़ा यज्ञ चलेगा, इतना कुछ होगा, किसी को कुछ ख्याल नहीं था, बस जल्दी गए के गए, गए के गए। जैसे दादी जान की कहती है ना कि अगली दिवाली नहीं आई, बाबा कहते थे, देखो कितना बाबा ने कहा, कैसे युक्ति से या बाबा के ड्रामा अनुसार धीरे 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 हम कहां से कहां चले। हम जब ज्ञान में आए 1957 में, होंगे 10-12 सेंटर मुश्किल से थे, एक हमारे पंजाब में वो अमृतसर था, जलंधर नहीं था, एक हरगोबिंदपुर था, एक अंबाला कैंट था, शाहबाद था, करनाल भी नहीं था, सहारनपुर था, ऐसे 10-15 सेंटर होंगे मुश्किल से। फिर कितने भाई होंगे आप, अगर 200 भी भाई हों, 100-200 हों, कितने सारे इंडिया में भाई होंगे। तब बाबा ने हमको आके पकड़ा। हम बताएं, हम तो थोड़ा बैकग्राउंड सुना दूं कि कैसे हम बचपन में बड़ी भक्ति हमने की थी, बहुत हमारे लौकिक फादर बड़े भगत थे, वो सुनाते थे कथा भागवत रामायण, ये हर रात्रि को जाके कहीं कहीं हम भी साथ साथ चलते सुनते थे। तो सारी ये जो भागवत रामायण महाभारत जितनी कैसे किसे कहानियां थी हमने सब सुन रखी थी पूरी, एट द एज ऑफ 10 ध्रुव प्रहलाद ये बनना है वो बनना है सब, हम भी एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करते थे, मंदिर में जाके साहब विष्णु जी के साक्षात्कार हो जाए करते थे, देख करके बहुत भक्ति के संस्कार थे। परंतु भक्ति के संस्कार धीरे धीरे जैसे पढ़ते गए और भगत पंडितों और ये धर्म के ठेकेदारों को देखते गए खत्म होते गए। लेकिन भक्ति भी अच्छी होती है, ना होने से तो अच्छा है भक्ति करो, कुछ ना कुछ तो मन ठीक रहता है। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए पटियाला में, आप में पंजाब वाले बैठे हुए कोई, हम हमारे लोग माता पिता चाहते थे कि हम इंजीनियर बने, तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 20 और पढ़ाई शुरू की। तो हमारे एक ओम प्रकाश भाई जी, आप इंदौर जोन के इंचार्ज आप जानते हैं, वो हमारे साथ पढ़ते थे, एक ही साथ साथ रूम था 112-113, तो वो ज्ञान सुन के आए थे। अब देखो बाबा ने कैसे उनको मेरे लिए भेजा, हम बताएं आपको, कहते बाबा ढूंढता है कैसे अपने जो बच्चे कहां कहां छुपे हुए हैं उनको ढूंढता है, किसी ना किसी बहाने से भेजता है, ढूंढता है, हम बच्चों निकाला, हमने कोई ढूंढा नहीं, हम ढूंढे उसको अगर हम जानते हो, अगर मैं आपको जानता हूं मैं आपको ढूंढ लूंगा, मैं जानता नहीं मैं ढूंढूंगा कैसे। तो शिव बाबा ने हमको ढूंढा, उसके वो ज्ञान में आया, बड़ा वैराग्य था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके फादर कहते थे पढ़ो इंजीनियरिंग बहुत स्टडी है, जब एक दफा ज्ञान मिल जाता है वैराग्य आता है तो कोई ऐसे काम करने को दिल करता ही नहीं है, कोई लोग पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ, उसने कहा मैं तो पढ़ूंगा नहीं, तो बाबा ने खास पत्र लिखा ब्रह्मा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा, बच्चे तुम जाओ पढ़ो, तुम पढ़ने जाओ, तुम्हारी इंतजार करें, तुमने कईयों को निकालना है, तुम्हें सेवा करनी है। वो आए, हम उनको देखते थे हमारे साथ साथ, क्योंकि टाइम थोड़ा है जल्दी बताना है, साथ साथ रूम थे, हम उनको देख के गए ये कैसा व्यक्ति है, ना ये बोलता है ना किसी से बात करता है ना कुछ चलता है हमारे साथ कभी खाने पीने के लिए ना कोई पिक्चर देखता है, ये आदमी कैसा है, ये इसकी दिनचर्या डिफरेंट है, सारा दिन अंदर बैठा रहता अपने कमरे में, हमें क्यूबिकल रूम मिले हुए थे, ये रीजन क्या है इसका। हम उसको तंग करने के लिए दौड़ खड़काते थे, निकलो बाहर आओ ढूंढो चलो चलते हैं कहीं, वो निकले नहीं, वो निकले तो बहुत टाइम लगा के निकल, दरवाजा खोलते थे कि मैं क्यों, क्या बात है अंदर, कौन से आपके हीरे मोती पड़े हैं कि तुम बड़ा दरवाजा बड़ी देर से खोलते हो, क्या रीजन क्या है। वो क्या होता था, मुरलियां होती थी उनके पास, वो मुरलियों को सिराने में छुपा करके फिर वो बाहर निकलते थे, कहते थे भाई, वो कहता कोई ऐसे व्यक्ति को मैं ज्ञान सुनाऊं जो उसको कोई समझ भी आ नहीं, यहां तो लोग ऐसे हैं सब कॉलेज के लड़के हैं, मैं किसको पकड़ूं। वो ये सोचते थे हम बिच्छू कहां, वो बाबा कहते डांग मारो जहां पर कोई हो सुनने वाला भी हो, तो मुझे वो इसलिए वो घबराते थे, लेकिन मैं उनसे कोई ना कोई बात करता रहता था। उन्होंने एक दफा क्या मेरे कमरे में आया कि मुझे भाई माचिस चाहिए, अगरबत्ती जलानी है तो मुझे माचिस दो। देखा मेरे पास थी, उसने उसमें एक गीता पढ़ी थी मेरे पास, जो मुझे पुरस्कार मिली थी, हम मैट्रिक में फर्स्ट आए थे तो गीता हाई स्कूल में से पुरस्कार मिला। उसने देखा कहते ये तो लगता है कोई धार्मिक आदमी है, जो गीता जिसके पास है तो जरूर धार्मिक होगा, हमने कभी पढ़ी भी नहीं वो गीता, संस्कृत के श्लोक थे गीता गोरखपुर वाली, ہم نے کبھی پڑھی بھی نہیں تھی، ایسے دیکھی بھی نہیں تھی. تو اس نے پھر مجھے سنانا شروع کیا اور ہم نے سننا شروع کیا کہ آپ آتما ہیں. ہم کہ ہم تو آتما نہیں ہے، کیسے آتما بتاؤ. بہت ڈسکشن چلتی رہی. وہ کہے آپ آتما ہیں، میں کہتا ہوں میں نہیں ہوں، مجھے دکھاؤ کہ ایسے آتما ہیں. ہم مانتے تھے اندر کوئی آتما تو ہے ہی ہے، لیکن فار دی سیک آف ڈسکشن لگے رہے ہم کئی دن تک. پھر ایک دن اس نے یہ کہا کہ ہم پکچر بہت دیکھتے تھے، ہم بتائیں آپ کو. اس نے ہاتھ ملایا کہ آج سے آپ پکچر مت دیکھنا. تو ہم اندر سے چاہتے تھے بھی اچھی چیز تو نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہاں یس. تو کافی دن تک ہم نے دیکھی نہیں پکچر، ایسا پربھاؤ پڑا اس کے ہاتھ ملانے سے. تو میں نے کہا یہ بڑا کوئی سادھو آدمی ہے. پھر اس نے سنایا، اس نے ایک دن کہا چلو آج آپ مان جاؤ کہ آپ آتما ہیں، یہ بات کہی. میں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی میں اندر سے مانتا تھا کہ ہم آتما تو ہیں ہی، جو ہمارے ہندو دھرم کے ہیں، اتنے پڑھا ہوا تھا ہم نے، سب شاستر وغیرہ سنے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یس آج میں مانتا ہوں کہ میں آتما ہوں. بس آپ مانیں گے یہی کہنا تھا، اونلی اتنا کہنے کی دیر تھی اور انبھوتی چالو ہو گئی. یہ جو باڈی کانشیسنیس تھا وہ دور ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت بہت بچے بابا کے تھوڑے تھے اور بابا لگ میں سمجھتا ہوں فری ہوں گے. بہت ٹچنگ ہوتی تھی، زبردست. اتنا مجھے ماننا تھا بس، جیسے کہ چینج آنا شروع ہو گیا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا میں آتما ہوں، شریر نہیں ہوں. آئی ایم سول ناٹ باڈی، جگہ جگہ لکھا المیرا پر، دیوار پر، آئی ایم سول. کیونکہ باڈی کانشیس بہت تھا نا، جب یہ چیز ملی تو جو باڈی لیسنیس فیل ہونا شروع ہو گیا اسی دن، ایک دن کے اندر اندر. ہم بتائیں آپ، آئی واز ونڈر اسٹرک، میں کہ یہ کیا مزہ آ رہا ہے، کیا خوشی آ رہی ہے، کیا آنند آ رہا ہے اسی ایک بات سے ہی. ابھی اور تو کچھ سنا ہی نہیں آگے. تو میں بڑا پربھاوت ہوں اس بات سے، جیسے کوئی لائٹ دکھائی دی. یہ نہیں کہ لائٹ دیکھی، یعنی جیسے نا گوتم بدھ کو وہ لائٹ نالج، یعنی ریئلائزیشن ہو گیا، جیسے کہنا چاہیے دیٹ از دی بیسٹ تھنگ. یعنی سول ریئلائزیشن ہوا اسی ایک بات کو کہنے سے ہی کہ میں آتما ہوں. مزہ آ گیا جی. پھر میں نے کہا ابھی سناؤ اور کیا چیز آپ کے پاس، آپ تو بڑا اچھی بات سناتے ہیں. اور اس نے ایک دن میں ہی آتما، پرماتما، شیو بابا ساری باتیں سنا دی. ہم نے سن لی، بڑا بندر لگا. ہم نے اتنا جو سنا ہوا تھا، پہلے پڑھا ہوا تھا بھکتی مارگ کا، یہ ایسی ایسی باتیں سن کے کپاٹ کھل گئے. آتما کیا ہے، جیوتی بندو، وہاں اس وقت نہیں کہتے تھے، جیوتی سوروپ کہتے تھے. جیوتی بندو تو بہت بعد میں نکلا ہے، جیوتی سوروپ. اور پرماتما کو بھی جیوتی لنگم کہتے تھے، شیو. پرماتما شیو ہے. اب میں کیوں بتا رہا ہوں کہ میں کسی کے پریم پیار سے گیان میں نہیں چلا ہوں، مجھے تو نالج اتنا اچھا لگا. پرماتما جیوتی، پرماتما شیو ہے. ہم سنتے تھے، پوچھتے تھے، جیوتی سوروپ ہے. نہیں اس پرکار سے یہ اتنی ونڈرفل بات لگی. پرماتما ہے کون، پرم دھام کا نواسی، یہ کسی نے نہیں بتایا تھا. ہم نے اتنی چیزیں پڑھ لکھی تھی، رام اور راون ہے ہی نہیں، اس پرکار سے یہ باتیں بھی نہیں لگی. مہابھارت ہوا نہیں، یہ ایک نئی بات لگی، کمال ہو گیا. پرماتما سرویاپی نہیں، یہ نہیں. کتنی ونڈرفل باتیں سن سن کے ہماری ساری جو وہ تھی گانٹھیں تھی نا، وہ دماغ کی سب کھل گئی. وہ یعنی اوپن ہو گیا سارا من، سنتوشت ہو گیا. پرماتما گیتا کا بھگوان شری کرشن نہیں ہے بندر، اور وہ ریزنیبل ہے، یعنی سائنٹیفک بات ہے، کوئی کہنے اندھشردا کی بات ہی نہیں. اور پھر وہ کہا کہ سرشٹی چکر 5000 ورش کا کیول، اب ہو بھو ریپیٹ ہوتا ہے. بہت آنند آیا، کوئی کوشچن نہیں اٹھا میں، نو کوشچن. کیونکہ ہم گیتا میں پڑھتے تھے ارجن ہم پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، پھر بھی ملتے رہیں گے، وہ سالو ہوگی بات. یعنی ساری باتیں اتنی ونڈرفل لگی، اتنی اچھی لگی، کوئی کوشچن نہیں. اور دو دن کے بعد مرلی سننی شروع کر دی. مرلی بھی سننے بھی، کون شیو بابا کون ہے، برہما بابا کا ہمیں بتایا بھائی شیو بابا برہما. اب سنگم یوگ چل رہا ہے، کل یوگ جا رہا ہے، ستیہ یوگ آ رہا ہے. ایسی ایسی باتیں سن کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت آنند آیا. یعنی اتنا آیا جیسے وہ سکھ محسوس ہوا. کہتے ہیں نا کیول یوگ سے ہی سکھ محسوس نہیں ہوتا. وہ دکھاتے ہیں نا وشنو جی کو، دکھاتے ہیں وہ سانپ پر لیٹا ہوا اور مسکرا رہا ہے. وہ لکشمی جی پوچھتے ہیں کیوں مسکرا ہو، کیا میری کبھی کمی ہے؟ کہتے نہیں، میں گیتا گیان کو سمرن کر کے مسکرا رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں. وشنو جی بھی دکھاتے ہیں. تو ہم بھی وہ جو گیان سنا، اتنا ونڈرفل نالج، اتنا ریزنیبل نالج، اتنا سائنٹیفک نالج، بہت خوشی ہوئی. جس سے کیا ہو، میں نے کہا بھی بتاؤ یہ آپ کو گیان کہاں سے مل رہا ہے؟ तो ये कहा कि शिव बाबा ब्रह्मतन में आता है, जैसे वो सुना तो निश्चय हो गया कि ये कोई इंसान का नॉलेज नहीं है, ये स्वयं ज्ञानेश्वर ही सुना रहा है। ये उसी टाइम से निश्चय हो गया, अनुभूति होनी शुरू हुई, जो याद योग लगाना अनुभूति होने शुरू हुई। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम चलते हैं, जो सोर्स है उसको मिलने जाते हैं। वो तो घबराते थे भाई, नए नए हैं अभी, थोड़े दिन तो हुए, हफ्ता हुआ नहीं, चले हैं बाबा से मिलने के लिए। जब बाबा कहता ना, जिसको ज्ञान अच्छा लगता है वो भागता है फिर मिलने के लिए। तो हम भागे, तो कहां आए पहले, दिल्ली में आए। हम लोग दिल्ली जाएंगे, बाबा दिल्ली में आए हुए थे, बाबा मम्मा दिल्ली में आए। हम बताएं आपको, देखो एक शिव बाबा और एक ये ब्रह्मा सरस्वती या एडम एंड ईव या आदम और बीबी, ये सब मजबूत धर्मों में इसका गायन है, और चीजों का नहीं भी है। इन चीजों का तो है गायन, हर जगह आदम बीबी कहते हैं, वो एडम ईव कहते हैं, हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं। तो हमने उनको मिलना चाहिए, तो हम पहुंचे, भागे वहां से अकेले ही। और उसके बाद हम रात्रि को 10-11 बजे पहुंचे, पहली दफा कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में आए थे, रजौरी गार्डन बहुत दूर था, वहां पहुंच गए। तो मालूम नहीं बाबा को कैसे मालूम था कि हमारे वो खोला गया, हम वहां एक भाई ने खाना खिलाया, योग कराया, फिर वहां वही इसे कहना चाहिए बॉडी लेसनेस का फीलिंग हुई बहुत अच्छी, क्योंकि वहीं पर बाबा मम्मा वहां रहे हुए थे। तो हम सुबह फिर उठे बाबा की क्लास की, तो बाबा मम्मा को कहते क्या कैसे महसूस हुआ, ऐसे महसूस हुआ अभी कुछ और आगे बढ़ने से पहले, कि यही हमारे रियल में माता पिता है, तभी सही। और जब बाबा से मिले लास्ट में, मम्मा बैठी थी एक गद्दी पर, मम्मा बैठती थी एक गद्दी पर, बाबा बैठते थे बड़ी ऊंची गद्दी नहीं, छोटी गद्दी पर, तो दृष्टि ली, आंसू आने लगे। भाई क्यों आंसू आए, क्योंकि बहुत 5000 वर्ष के बाद फिर से मिल रहे थे। बाबा ने गोद दी, हमें नहीं किसी ने कहा गोद में जाना है, सब जैसे अभी लौकिक पिता की गोद में भी कोई नहीं जाता होगा, वो हम जो बच्चा बाबा से मिलता था बाबा की गोद में, मम्मा की गोद में, मम्मा दोनों की गोद में जाते थे, मम्मा बाबा टोली खिलाते थे, खिलाई। तो बाबा ने देखते ही एक मुझे वरदान दिया, अब बताऊं कौन सा वरदान था, आप सुन के आश्चर्य कहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, भगवानो वाच, बच्चे ये जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो ये काम आने वाली नहीं है, ये देखिए। ये था पहला वरदान। देखो आप, हम कहते हैं ना बाबा किसी को, मैं किसी का जानता कुछ नहीं भविष्य, बाबा जैसे हमारे भविष्य को जानते थे, बच्चे ये जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ये कोई काम आने वाली नहीं है, सामने विनाश खड़ा है पक्का, किसी धंधे में लग जाओ, हम धंधा क्या करना है ये पता नहीं। तो हम वहां से खुशी खुशी, ये बाबा का वरदान या बाबा की डायरेक्शन जो मेरे प्रति थी, वो हम आए और बताया उनको सबको, भाई ये बाबा ने कहा है। तो हमने एक लेटर लिखा बाबा को, फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश टू बाबा, और बाबा ने इंग्लिश में जवाब दिया, तो वो मैं सुनाता हूं आपको, अच्छा लगेगा। मैंने कहा आई वाज सिविल इंजीनियर पढ़ रहे थे, मैं कहा आई डोंट वांट टू, लिखा इंग्लिश बड़ा सुंदर बना करके, बॉर्डर लगा करके, उन दिनों में कंप्यूटर तो थे नहीं, सब हाथ से लिखते थे, बड़ा सुंदर लिखा वो इंग्लिश में लिखा, बाबा आई डोंट वांट टू डिजाइन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एज ए इंजीनियर, बट आई वांट टू बी ए कॉर्नर स्टोन आर अ फाउंडेशन, वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग। हाँ, मैं उस बहुत बड़े जो आप नई दुनिया रूपी महल तैयार कर रहे हैं, मैं उसका एक छोटा सा या फाउंडेशन स्टोन बनना चाहता हूं, ये ले लो। फिर कहा बाबा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, कंस्ट्रक्ट रोड्स, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे लीडिंग टू शांति धाम एंड देन गोइंग टू सुख धाम, ये लिखा। फिर हमारे उन दोनों में मैकेनिकल सिविल इंजीनियर इकट्ठे होते थे 2 साल। आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी बट आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ ए मशीनरी ऑफ किंग एंड क्वींग मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। उन दोनों बाबा मुरली में बहुत कहते थे किंग ये है सारा किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। तो बाबा ने जवाब लिखा, फिर बड़ा इंग्लिश में जवाब लिखा बाबा ने। हमने वो लेटर रखे नहीं, क्यों नहीं रखे, हमने कहा हम कहीं बाबा जाने वाला थोड़ा है कोई, क्या करेंगे रख के, हम साथ ही रहेंगे। बहुत पत्र बहुत आते थे फिर तो बाबा ने कहा बच्चे बी पेशेंट एंड पहले बार हमेशा लिखते हैं ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्म नूर रतन ये लिख के ना और सुदर्शन चक्रधारी नूर रतन आत्म प्रकाश लिख के फिर ये लिखा बच्चे बी पेशेंट गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर फैमिली। ये बाबा का रिटर्न में दूसरा डायरेक्शन आया तो जो हमने कम से कम जो बाबा ने स्थूल डायरेक्शन दिए उनको तो पूरा पालन किया। बाकी ये बाबा कहता निरंतर याद करो वो तो नहीं हो सका लेकिन ये जो स्थूल डायरेक्शन थे पत्रों द्वारा ऐसे द्वारा जो भी होता था हम उसको फॉलो करते थे। तो क्या किया बाबा ने ये कहा तो बस लग गए हम फिर सेवा में। तब से सेवा चालू हो गई। अपने हॉस्टल में रूम था वहां पर शुरू कर दिया तो वहां पर हम शुरू किया लाल बत्ती जला दी वहां उन दोनों दिन शिव बाबा का पथ चौतरी होता था एक लाल बल्ब जलाया और ग्रामोफोन लाए होता ना ग्रामोफोन उन दोनों में ये टेप वेप नहीं थे ग्रामोफोन वो चाबी भर के और वो सुई रखते थे तो रिकॉर्ड बजता था ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें वो जो रिकॉर्ड थे उन दोनों के तू प्यार का सागर है ये सब बातें हम उनको गीत गाते थे और शिव बाबा को याद करते थे। जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो भी क्लास में आने शुरू हो गया थोड़ा तो वार्डन कहे ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो हम हॉस्टल में क्या हो रहा है यहाँ। हमने कहा जी ये तो हम योग करते हैं। कहता नहीं ये तो यहाँ नहीं हो सकता। फिर हमने पटियाला में एक बैर लिया कोठी में कमरा लिया दो कमरे लिए सेवा चालू होगी। फिर कहीं निकल आए फिर हम मम्मा के पास मिलने गए। मम्मा आई थी दिल्ली में मम्मा आप तो हमारे सर्विस चालू हुई कोई बहन हमें दीजिए। कहते आप लोगों को बहन कैसे मिलेगी आप तो कुमार हो कोई युगल निकले तभी तो उस बहन मिलेगी। तुम एक माता दे दी बूढ़ी सी माता दे दी हमें योग कराती थी खाना बनाती थी हम सारा दिन इसी सेवा में लगे रहते थे। और हम जब वहां पर गए एक बात हमने देखी अभी तो पहले पहले दफा जब गए बाबा क्लास के बाद चाय पिलाते थे। आपको मालूम हो जब सर्दी के मौसम में बाबा आते थे दिल्ली यहां बहुत सर्दी होती थी वहां आते थे वो केतली उठा के ना बाबा सब बच्चों को चाय पिलाते थे हम भी चाय पीते थे टोली खिलाते थे खाना खाना ये करना। एक हम जब बाबा मम्मा चल रहे थे हम पीछे पीछे फिर क्लास के बाद बाबा घूमने ले जाते थे तो मैं मम्मा से पूछा मम्मा अब उन दिन थोड़े सात आठ दिन के होंगे ये सारा चल कैसे रहा है ये सारा ना कोई भंडारी यहां पर है ना कोई किससे कोई मांग रहा है ना कोई किसी को दे रहा है हाउ इट इज गोइंग ऑन। मम्मा मुस्कुरा कर कहती है ऊपर से। तो हमने कहा हो सकता है क्योंकि हम जब पटियाला में थे तो हमारी ध्यानी दादी थी एक बहुत आप शायद नहीं देखा होगा आपको ध्यानी दादी ध्यान में बहुत जाते थे वो भी दादी बहुत पुरानी दादी थी आती थी हमारे पास हर गुरुवार को वहां उस वक्त दो दिन हफ्ते में दो दफा भोग लगता था एक गुरुवार को एक इतवार को आएंगे वो ऐसे हाथ करेंगे कभी हमको फल देंगे कभी हमको फूल नया देते फूल देंगे। हम कहते क्या पता जैसे ये आता ही हो ऊपर से कभी कोई मांगता नहीं यहां पर कोई भंडारी यहां पर नहीं है कहां से हो रहा है सारा खर्च। फिर बाद में पता लगा कि देखो हम सब मिलकर करते हैं अभी तो नए नए थे ना। तो कहने का मतलब इतना इतना कुछ बेगरी पार्ट था हम दोनों में कोई इतना ही तो हाई स्टैंडर्ड नहीं था छोटे छोटे मकान थे कबाड़ी बाजार में मकान गजीता इस प्रकार के मकान भी छोटे छोटे होते थे थोड़े लोग थे माताएं बहुत थी भाई तो बहुत कम थे। हम बताया हमारे सारे सेवा केंद्र माताएं बहुत आती थी भाई कम आते थे। तो इस प्रकार से हमने पूछा तो मम्मा ने देखो इन्हीं इतना कुछ हो तो भी कोई किसी से मांगने की बात नहीं थी मैं इतना हाई स्टैंडर्ड था देखो उस वक्त। तो ठीक है हम चलना शुरू हुआ तो फिर हमने सेवा केंद्र खोल गया। तो उन दोनों में एक जैसे सेवा केंद्र खोलना माने अभी तो आजकल तो रिट्रीट सेंटर खोलना ही बड़ी बात नहीं रही है उन दोनों में एक सेवा केंद्र खोलना माने एक बहुत बड़ा काम किया है। जब कोई सेवा केंद्र हम कुमार थे यानी हुए तो बाबा मुरलियों में कहेगा देखो पटियाला के कुमार कितने बहादुर है सेवा केंद्र खोला है ये क्या मुरलियों में नाम आ जाता था उन दोनों में एक छोटी सी बात से। तो हुआ फिर हमने एक नाभा जगह थी वहां सेवा केंद्र खोला चंडीगढ़ में सेवा केंद्र खोला तब पटियाला वालों ने खोला। इस प्रकार से सेवा केंद्र खोलने का सीजन एक हाबी हम जो कुमार थे उनकी बनती गई हम जाते ही करते रहे। और हमारा आप जानते हैं जब हम इन चीजों में लग जाएंगे कभी प्रदर्शनियां हैं कभी बाबा आ रहे हैं कभी मम्मा आ रहे हैं कभी भोग है कभी कुछ है तो पढ़ाई में तो दिल लगेगा नहीं। आप बताइए जिसको ये निश्चय हो जाए सोचो आप स्वयं भगवान आया हुआ है रियलिटी इट इज नॉट ए imagination, it is real. God has come and He is doing His work. अपना कार्य कर रहा है. तो क्या करेंगे हम बताओ, क्या करना चाहिए उसको जिसको ये निश्चय हो जाए, वो क्या करेगा? हमने यही उस वक्त वादा किया कि जो शिव बाबा आया है वो कार्य करा रहा है, जो बाप का कार्य तो बच्चे का कार्य. तभी से कि हमने जो बाबा कार्य करे हम वही कार्य करेंगे, ऐसा शुरू हुआ. तो हम चलते रहे, करते रहे. और बाबा ने फिर ये नहीं कहा कि पढ़ाई, हम तो पढ़ते थे ही नहीं. अब बताएं आपको, हफ्ता हफ्ता मिस कर देंगे क्लासेस. इंजीनियरिंग पढ़ाई है, बड़ी मुश्किल पढ़ाई है. आप बताइए, एक हफ्ते के बाद जाओगे तो समझ कुछ आएगा ही? हमें कुछ समझ नहीं आता था. हमारी वो टोपो लगा देते थे लोग, वो हाजिरी जो हमारे दोस्त होते थे भी, हाँ, जब जाते थे तो लोग कहते थे आओ, हफ्ते से लोग कि प्रिंस आए हैं इतने दिन के बाद, ऐसे बोलते थे लोग. वो प्रोफेसर भी, एपी मेहता बोलेंगे, मैं यस सर बोलूंगा तो लोग हंस पड़ेंगे, देखो कब कहां से आए ये. इस प्रकार से हम चलते रहे, कोई पढ़ाई पढ़नी नहीं, पता नहीं फिर भी हम पास कैसे हो गए. आई टेल यू, सच ही कहते हैं, हमने कभी ड्राइंग भी नहीं की. लोगों की शीट ला के टोपो कर लेते थे, सबमिट कर देते थे. कभी कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया नहीं, लेकिन फिर भी चार साल के बाद हम पास हो गए. कमाल की बात है. और आई टेल यू, आई वॉज द टॉप स्टूडेंट इन पढ़ाई में, टॉप था, हमेशा स्कॉलरशिप होल्डर. और जब बाबा का ज्ञान मिला, हम स्पष्ट बताएं आपको, आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट टू पास द यूनिवर्सिटी. सबसे आखिरी स्टूडेंट नहीं था, उसने समझो पास कर दो, बेचारे ने मेहनत किया, कुछ कर दो. अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं थी हम पास होंगे. क्योंकि इसी बीच में क्या हुआ, हमारे सारे लोग, बाबा ने कहा था ना, लोग घर वालों को ज्ञान दो, सारे ज्ञान में आ गए. हम गए सुन के गए ज्ञान अपने लोग. बाबा ने कहा था समर वेकेशन में हम अपने लोग के घर में गए, पहले माता जी को पकड़ा, अभी माताएं जल्दी का उनको ज्ञान दिया, काम मार शत्रु है. वो कहेंगे काम का छोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, दुनिया कैसे चलेगी. नहीं काम, उनको पता नहीं काम होता है क्या है, दे डिड नॉट नो. हमारी अनपढ़ माता थी, अभी भी हमारे पास रहती है, 106 साल की है, शी इज विद मी. तो मैंने समझाया इस प्रकार से, उनको ज्ञान सुनाया. हमारे पिताजी भी कितने पढ़े लिखे नहीं थे, केवल उर्दू जानते थे. उनको लिख के दिया, आप आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, उनके गुण लिख के दिए, आप इसको अंदर अंदर रिवाइज करते रहो, चलते रहो. तो ऐसे करते चले, चलते चले. उन्होंने कहा भी ज्ञान तो आपका अच्छा है, बिल्कुल राइट है ज्ञान. मैं आपको सुना रहा हूं कैसे बाबा बच्चों, कैसे बाबा पकड़ता है परिवार को. तो लेकिन अगर यदि आपका बाबा हमें कुछ दिखा दे, मैंने बड़ी भक्ति की है, फिर मानूंगा कि आपका बाबा शिव बाबा, ये पूरा भगवान है, शिव बाबा. तो मैंने कहा आज तक मैंने कोई देखा नहीं है. हम देखते थे बहनें दादियां जा रही, उन वक्त दादी नहीं कहते, बहनें भोग लगाती हैं, ये करती हैं, संदेश सुनाती थी. मैं इसके बारे में साइलेंट था. मैंने कहा ठीक है, हमें तो ज्ञान से मतलब है, अब इसका क्या रहस्य है, क्या मैं इसमें क्यों डीप में जाऊं, मुझे तो ज्ञान चाहिए. फिर भी अंदर थोड़ा था, अभी किसी को अगर हो तो अच्छी बात है. तो जब हमने कहा अभी हमें नहीं अभी तक कोई साक्षात्कार हुआ, तो आपको कैसे मैं करा सकता. अभी हमारे लौकिक पिताजी ने ना किसी दीदी से मिले थे, ना दादी से मिले थे, ना किसी बाबा को चित्र देखा था झाड़ मूर्ति में, बाकी वो नहीं था. एक दफा हम भी जब गुरुवार का दिन था, हम सब बैठे परिवार के लोग, माता पिता और तो कोई थे नहीं वहां पर, थोड़ा आस पास की बातें थी. चलो भोग लगाते हैं, भोग लगाना शुरू किया तो उठ के खड़े हो गए हमारे पिताजी, लौकिक पिताजी, बड़ा आश्चर्य हुआ. उठ के चले आ, और कभी कुछ पकड़ते हैं, कभी कुछ पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, कभी यहां जाए फिर वहां से वहां जाए, वहां से वहां जाए. मैं देख रहा हूं नजारा ये, मैंने कहा कुछ हो रहा है आज, समथिंग इज हैपनिंग. आई वॉज वेरी हैप्पी कि समथिंग इज हैपनिंग. तो बड़ी खुशी हुई अंदर, हाँ कुछ ना कुछ, यहां कोई दादी भी नहीं है, ना बाबा कुछ ने देखा नहीं है, कोई जादू भी नहीं, क्या हो रहा है. तो बड़े उदास होकर नीचे उतरे वो, यानी फिर आए वो, कहने लगे मैं क्या देखा आपने. कहा कि मैं ऊपर कहीं गया तो मुझे बहुत सुंदर छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण देखने में आया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे, भागवत पुराण बहुत पढ़ते थे, रात को पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, इतनी उनकी भक्ति होती थी, बहुत भक्ति की थी, बड़े भोले थे वो. लेकिन जब मैं उनको पकड़ने लगा, वो यहां जाऊं तो वहां जाए, यहां जाऊं तो वहां जाए, मेरे हाथ में नहीं आया, तो मैं बड़ा उदास हो गया. तो फिर मैंने कहा क्या हुआ, फिर कहता फिर आपके बाबा जी फिर मुझे नजर आए. उन्होंने कहा बच्चे अगर तुम पूरी धारणा पर चलोगे निश्चय बुद्धि होगे तो श्री कृष्ण को आप पा सकेंगे। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ब्रज करो। और बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन धारणा जो थोड़ी बहुत थी वो ठीक हो गई। तो अगले दफा फिर हम भोग लगाया तो फिर इसी प्रकार से वो ध्यान में चले गए। उनका ध्यान का पाठ खुल गया जबरदस्त। हम कोई उसके बाद क्या हुआ, हम कोई उनसे बात के बाबा से पूछ के आओ, बिल्कुल एक्यूरेट पूछ के आते थे। आई टेल यू, हमने कहा हमने ये चीज बेच, जमीन बेचनी है, बेचे क्या नहीं बेचे? पहले कहा नहीं बेचो, फिर एक दफा दोबारा कुछ समय के बाद कहा बेचो। यानी वो पूरा जो बाबा उनको बताते थे वो पूरा हमको बताते थे, बड़ी रियल बातें। और वो जो हमारे लौकिक फैमिली वाले बड़े प्रभावित होते थे, भले जो ज्ञान नहीं सुनते थे वो भी कोई बात पूछते थे तो बता पूछ के बाबा से आते थे। नहीं, बाबा ने उसका इतना अच्छा पाठ खोल दिया, इससे सारे लौकिक परिवार वाले ज्ञान में आ गए। और वहां छोटा गांव था, सेवा केंद्र तो नहीं खुला, माता जी हमारे साथ आ गए। इस प्रकार से पूरा परिवार, माता पिता भाई बहन सभी इस बात से नहीं, अनुभूतियों से भी और ज्ञान के बल से वो ज्ञान में चलने लगे। और अब पहले कहते थे इंजीनियरिंग में पढ़ो, फिर कहने लगे तुम्हारी मर्जी है पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि उनको भी वैराग्य आ गया सब। तो इस प्रकार से चलते चले इंजीनियरिंग पास कर ली। और बीच में हम जब फर्स्ट टाइम, एक और बात सुनाता हूं बाबा की अनुभव की बात, हम जब फर्स्ट टाइम आए वहां पर बाबा से मिलने के लिए, हमारी 21 साल की एज होगी और ब्लेजर पहना हुआ था इंजीनियरिंग का, कैमरा हाथ में था। उसमें बाबा को फर्स्ट टाइम मधुबन जब आया, दिल्ली में तो मिले कई दफा, दिल्ली वहां पर आए, बाबा 80 साल के थे 81 साल के थे, मैं देखा उनको क्रिकेट खेल रहे थे। अब बताइए, जैसे नहीं हम आजकल जो खेलते हैं बच्चे, वो छोटी सी गेंद होती है ना फेंकते हैं और वो ऐसे करते हैं, तो बाबा और श्री बाबा दादा बिच्छू रतन और सब भाई जो होते हैं बाबा के, जो मिलने पार्टी में आए होते हैं वो पकड़ने के लिए, वो अभी जो टेनिस जो अभी शांति स्तंभ बना हुआ ना, ये सब बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी, ये ना ये वो था हिस्ट्री हॉल था, सारा खुला मैदान था, एक दो वृक्ष होते थे। तो मैंने देखा इतनी एजेड और इस प्रकार से बाबा खेल रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, सब हंस रहे हैं मुस्करा रहे हैं, वंडरफुल सीन था ये। तो मैंने कैमरे से फोटो लेने की कोशिश की, तो बाबा ने फिर मां बाप के उच्चारण के, बच्चे मेरा चित्र तो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये कौन बोलता है मेरा चित्र नहीं आएगा, कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा बोल रहा है कि मेरा चित्र तो, मैं तो विचित्र हूं, ये बोला मेरा चित्र तो आएगा नहीं। बच्चो ये तो शरीर किसी काम का नहीं, देखो ये बाबा क्यों बोल रहा है, यानी इस देह मान को तुड़वाने के लिए कि शरीर को मत देखो, देखना तो देखो शिव बाबा को देखो, जिसका कोई चित्र विचित्र है, जो नहीं कोई शरीरधारी नहीं है, यानी ये शिक्षा देने के लिए। देखिए हम जब आया बहुत वंडरफुल चीजें देखी, उन दिनों में बाबा की युगल भी थी और मम्मा की मां भी थी उन दिनों में वहीं। और देखो मम्मा की मां मम्मा से मिलेगी, मम्मा बोलेगी, यानी मम्मा की जो मम्मा बेटी है रोचा, उसका नाम रोचा था, वो मम्मा को मम्मा बोल रही है, मम्मा उसको बेटी बोल रही है, वंडरफुल दृश्य। आप बताइए, आप सोचो इतनी धारणा, इतनी यानी सोल कॉन्शियसनेस, कोई रिश्ते की बात नहीं है, यानी मम्मा की मां जो रोचा थी उसको मम्मा बच्ची बोलेगी, यानी जो उच्चारण करेगी, और मम्मा की मां अपनी बच्ची को मम्मा बोल रही है, कितनी वंडरफुल बात है। और बाबा भी युगल को जो उनकी युगल थी तो थोड़ा उनको क्या बोलेगा, बच्ची बोलेगा और उसको बाबा बोलेगी, यानी कितना वंडरफुल है, धारणा की बात है। और आज उसने महात्मा गांधी ने बुढ़ापे में कह दिया मेरी कस्तूरबा मां, तो कितनी महिमा उसकी। यहां तो सारे रिश्ते ही बदल जाते हैं, देख लीजिए हम क्या देखते हैं, हरेक को भाई कोई भाई है, मां है, पिता है, कुछ है, हम क्या कहते हैं हमारे भाई आत्मा रूप में भाई भाई है। प्रैक्टिकली हमने ये देखा है, वंडरफुल चीज थी। तो ये चीज देखकर के बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छा लगा। देखे यहां पर कैसे निश्चय बढ़ता है, ये देखा, फाइल्स देखी, कैसे छोटी छोटी बहनें जो अब जो दादियां हैं, कोई 10 साल की, कोई 8 साल की, कोई 6 साल की, वो धूप में खड़ी हैं, आप देखो जगह फाइल, और वो उधर सिंधी लोग कोई टोपी पहने हुए, कोई बैत ले हुए खड़े हैं कि हम तुम अंदर नहीं जानेंगे, हम तो कहे खड़ेंगे आप क्यों नहीं जाने देंगे, पिक्टिंग हो रही है और वो खड़ी है। कितना آپ بتاؤ یہ کیا کس کا کاریہ تھا؟ یہ کوئی انسان کا نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی پلاننگ بابا کی تھی، یہ زبردست پلاننگ تھی. کیونکہ کیا درکار تھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پکڑنے کی؟ ان کو پتا تھا یہ بہت بڑا کاریہ ہونا، بہت بڑی استھاپنا کا کاریہ ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے کو پکڑا، پہلے بچوں کو پکڑا، ان کو پہلے گیان دیا، ان کو ٹریننگ دی. تو اس لیے اگر مانو وہ 50 سال کے وہ کو گیان ملتا تو آج تو رہتے نہیں ہوتے. دادی گلزار 6 سال 8 سال کی تھی، تبھی تو بھی ہیں کہ وہ 8 سال کی تھی. اگر وہ ہوتی 50 سال کی تو ہوتی کہاں تھا؟ تو گاڈ فادر پرماتما کی کتنی بڑی پلاننگ ہے زبردست. ہم 20 سال کے تھے، لوگ کہتے تھے گیان تو بزرگوں کے لیے ہے، تم لوگ کیوں جاتے ہو؟ اب ہمیں کو 20 سال میں پکڑا، یعنی اگر ہمارے لوگ فادر چلے گئے، یعنی اگر ہم ہوتے بزرگ اور ہمیں ٹریننگ ملتی تو ہم کہاں سے کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ شیو بابا کی، گاڈ کی بہت بڑی پلاننگ ہے زبردست، پکڑ کر کے ان سے سیوا لے رہا ہے، ہر ایک سے کام لے رہا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تو بہت اچھا رہا، اس پرکار سے چلتے رہے چلتے رہے. پھر ہم نے انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ کے بابا مما یہ اپنے لوگ کے ماتا پتا کو لے کر کے مدھوبن میں آئے بابا سے ملے. بابا نے کہا میں تو پہلے کہا تھا کہ تمہیں انجینئرنگ کی پڑھائی کام آنے والی نہیں ہے، تو ہمیں کہا کہ پہلے کہا جے پور جاؤ وہاں سیوا کرو، پھر ہم کو بھیج دیا بھراتا جگدیش جی کے پاس. تو میں سنجے بھائی، سنجے جو سارے ایشوری وشو ودیالیہ کو چلیے ابھی. پھر ہم بابا نے ہمیں وہاں بھیج دیا بھراتا جگدیش جی کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا لمبا انوبھو ہے. ایک میں بات کہہ رہا ہوں، تو ہمیں جب انجینئرنگ پاس کر لی، ہم ڈگری لینے نہیں گئے. ہوتا نا وہ کوٹ پہن کر کے وہ کیا کالا کو پہن کر کے ڈگری لیتے ہیں، ہم لینے نہیں گئے. کیوں؟ ہم نے ایک سٹوری سنی ہوئی تھی گرڑ پران میں. تو وہ ایک وہ تھے، ایک یاتری تھے، وہ جا رہے تھے یاترا کرنے، بھگت تھے یعنی اچھے رچ تھے. تو ساتھ اس کے جب تھوڑا ٹائم بیتا تو اور بھی چل پڑے، اور جب راتری ہوئی تو اس نے بھی تو بڑا امیر آدمی ہے، پیسے ویسے بہت ہیں، اس کو لوٹ لیا، اس کو پکڑ کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا. آپ نے سنی ہوگی سٹوری شاید. وہ گرتے گی تو اس نے ایک بیل پکڑ لی، وہ تو نا لٹکی کنواں بہت پرانا ہو تو کوئی بیل لٹکی ہوتی ہیں، وہ اس کی پکڑ لی، لٹک کھڑا ہو گیا بیچارہ، اس کو وہی سارا ملا. تو جب دن نکلا تو دیکھا اوپر، دیکھا کہ نیچے دیکھا پہلے تو اجگر سانپ کنویں میں بیٹھا ہے، اوپر دیکھا تو وہ ایک چوہا اس بیل کو کاٹ رہا ہے. کیا کرے گا بیچارہ بتاؤ؟ اگر وہ اوپر نہیں چڑھتا تو نیچے گر جائے گا، وہ کھائے گا، اور اگر نیچے گرتا ہے تو اجگر ہے، پانچ وکار جیسے کہنا چاہیے. تو جلدی جلدی وہ کر کے اوپر نکل کے آ گیا. یعنی اگر اس کو سپورٹ نیچے مل جاتا تو کیا ہوتا؟ تو شاید وہ نہ نکل سکتا. ہم کہتے ہیں وی برہمنس شوڈ ناٹ ہیو اینی سپورٹ ٹو اسٹینڈ اپان. ایک بل ایک بھروسہ. اگر میں ڈگری لیتا، کبھی پریکشا آتی ہیں آپ جانتے ہو، سارے کو پریکشا دو گے جب مارک پہ چلتے آتی، چلو سروس کر لو، جاب کر لو. نہیں، ایک بل ایک بھروسہ. نو آج کل تو ڈگری مل رہی ہے سب کو، آج کل یہاں پر ایم بی اے پہ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ لینی نہیں ہے ڈگری جانے، کیونکہ ہمارا ایک بل ایک بھروسہ. نہ مکان چاہیے، نہ دکان چاہیے، نہ یہ چاہیے، نہ وہ چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ ایک بابا چاہیے. دادی ہماری کہتی تھی نہ مان چاہیے، نہ مرتبہ چاہیے، نہ منی چاہیے، نہ مہما چاہیے، کون چاہیے؟ ایک بابا چاہیے. اسی کارن سے ہم وہ لینے نہیں گئے ڈگری. تو پھر سروس، اب بابا یہ چاہتے تھے، ہم بتائیں بابا کی چاہنا تھی، اتنا بچہ انجینئرنگ پہ، اس کو کچھ کام ہونا چاہیے، کوئی اور ڈپارٹمنٹ ملنا چاہیے، تبھی ہمیں وہ ٹریننگ کے لیے بھیجا بابا جگدیش بھائی جی کے پاس، کچھ ٹریننگ لی. پھر ان دونوں میں کیا ہوا میں بتا رہا ہوں. ان دونوں میں وہ ایگزیبیشن انوینشن ہوئی دلی میں، بامبے میں. ایک چتر ہمارے بھراتا نروید جی نے، رمیش بھائی نے انوینٹ کیا سیڑھی کا. ترمورتی جھاڑ وغیرہ پہلے تھے، سیڑھی پہلے نہیں تھی. تو ایک سیڑھی کی سلائیڈ ہمارے پاس آئی دکھانے کے لیے، ہم نے دیکھی تو ہم نے اس کی ایک کاپی کرا کے بہت سندر آرٹسٹ سے ہم نے وہاں سے دادی پرکاش منی تھی، دادا وشک کشور تھے، ان کے دوارا مدھوبن میں بھیج دی، اور بابا کو بہت اچھی لگی. بس اسی دن سے بابا کے لیٹرز آنے میرے پاس شروع ہو گئے، بچے یہ بنواؤ، اس میں یہ کریکشن کرو، اس میں یہ ڈالو، اس میں وہ مرادی دسائی کو دکھاؤ، بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھن بھن پرکار کی جو لیٹرز میں سی ڈی میں باتیں تھیں نا، وہ ساری باتیں ہیں. بابا بہت انٹاکسیکیشن تھے، انٹاکسیکیشن وہ نہیں، وہ کیا جیسے کہنا چاہیے نا، بے فکر بادشاہ کو کسی کا کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو ہم ڈرتے ہیں کہ گیتا کا بھگوان مت رکھو، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. اس سمے یہ بات نہیں تھی. آپ ان دنوں میگزین نکلتی تھی ترمورتی، آپ ایک پیج کھولو گے ہوگا پرماتما سرویاپی، دوسرا پیج کھولو گے گیتا کا بھگوان شری کرشن، ایسی ایسی باتیں ہوتی تھی. اب تو ہماری دھارناؤں کی انوبھو وغیرہ کی باتیں، ان دنوں میں یہ باتیں نہیں تھی، گیان کی باتیں بہت ہوتی تھی. تو ہم نے سی ڈی بنوا کے بابا کے پاس بھیجی تو بہت اچھی لگی. اسی سمے سے دھیرے 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 ہمیں ایک چتروں کا شوق شروع ہو گیا. ہمیں لوکک ورثہ ملا باپ سے، ہم نے چتر شالا کھولی، اسٹوڈیو جیسے کہ چار پانچ آرٹسٹ امپلائی کیے، چتر بنانے شروع کر دیے. تو پھر ہم ایک سیٹ چتروں کا، 20 چتروں کا سیٹ پہلے پہلے بنوا کر، نئے نئے پرکار کے بھی تھے، آتما کا نیا تھا، وہ کئی بھن بھن چیزیں بنا کر کے بابا کے پاس ہم لے آئے. 1965 ہوگا شاید، مجھے یاد نہیں ہے، ہسٹری ہال بن چکا تھا، وہاں پر آ کے ہم نے رکھ دیا. اور بابا اور دیدی یا مما چلی گئی ہوں گی شاید، آئی ڈونٹ نو، وہ آ کر دیکھنا، سب ایک ایک چیز کو دیکھا، ایک ہر ایک چتر کو دیکھتے دیکھتے دیکھتے، اور میں ایکسپلین کر رہا تھا بابا یہ 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 اس پرکار سے. تو اچھا لگا بابا کو، بھی فرسٹ اٹمپٹ تھی، آئل پینٹنگ تھی. اور ایک چتر پتا کتنے کا تھا؟ 20 روپیز، 20 روپے کا چتر بنا کے لائے تھے ہم. وہ تو بابا کو بہت اچھا لگا. پھر بابا نے ہم کو بلایا اپنے کمرے میں، دیکھو چھوٹا سا ہم کام کر رہا تھا، ہیز دا وہ تو وشوکرما ہے، کیا کتنی ان کی اپادھیاں ہیں، چھوٹا سا ہم کام کر کے آئے تھے. تو بابا نے بلایا اپنے پاس اور میں نیچے بیٹھنے لگا، گدی کے نیچے بابا بیٹھے تھے، بابا جانے میرے ساتھ بیٹھو گدی کے پاس، اوپر بیٹھو. میں تو سنکوچ کر رہا تھا کہ کیسے میں بیٹھوں بابا اور میں ساتھ کیسے. ہم تھوڑا لجا کرنے والے تھے، زیادہ بولنے والے نہیں تھے، کارے میں لگے رہتے تھے ہم، بتائیں آپ، ایک ورکر ٹائپ کے تھے. تو بابا نے پھر مہاواکیہ اچارن کیا، آپ سبھی کے لیے بہت وہ انٹاکسیکیٹنگ ہے، بچے جو باپ کی گدی سو بچوں کی گدی، یہاں بھی اور وہاں بھی. وہاں کہاں کہاں پر بتاؤ؟ گولڈن ایج میں جو باپ کی گدی یہاں سنبھالے گا تو وہاں بھی، یہاں بھی سنبھالے گا تو وہاں بھی سنبھالے گا. اس لیے آپ سب کیا بابا کی گدی سنبھالتے ہیں نا، سیوا کیندروں پر رہتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، باپ کا کاریہ کر رہے ہیں نا، باپ کی جو کام ہے وہی آپ کر رہے ہیں نا. تو باپ کی گدی تو بچوں کی گدی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگی. اس بات سے بہت وہ امنگ اتساہ ملا کہ دیکھو بابا چھوٹے سے کاریہ کو کتنا اونچا اٹھا رہے ہیں، کیا معمولی بات تھی. تو کیا کیا پھر، اتنے آئی ٹیل یو، ان مہاواکیوں نے اتنا کام کیا، سینکڑوں پردرشنیاں بنی، میوزیم بنے، اسپرچل فیئر بنے. اس وقت یہ پینٹنگ نہیں ہوتی تھی، یہ پردے پر آج کل تو کمپیوٹر سے کم ہو جاتا ہے، پینٹ ہو جاتا ہے، سب چیز ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، ہاتھ سے بنتا تھا، آرٹسٹ بناتے تھے، بہت ٹائم لگتا تھا. بابا کہا جلدی کرو جلدی کرو، بابا واد انہیں ہیسٹ جلدی میں تھا، یہ بناؤ وہ بناؤ. بابا نے کہا کوٹ آف آرمس بناؤ چتر، آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا کوٹ آف آرمس ایک چتر ہوتا تھا، 3 آرمیز ہیو ری اپیئرڈ، پانڈو یادو اینڈ کورو آل ہیو ری اپیئرڈ. پانڈو کون ہے؟ ہم پانڈو ہیں. ان کا کوٹ آف آرمس کون سا ہے؟ ترمورتی برہما شیو بابا برہما چکر اشوک چکر. اور وہ جو کورو یادو کون ہے؟ یہ سارے پانچوں برٹن وغیرہ ان کا کوٹ آف ہم لیا جہاں سے کوٹ آف آرمس وہ لگایا. اور کورو کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کورو، ہم بتانے کی بات نہیں ہے. وہ تینوں کوٹ آف آرمس لگا کر کے سب لکھ کر کے 3 آرمیز پھر سے آ چکی ہیں، آپ کس سینا میں داخل ہونا چاہتے ہیں. ایسے چتر بنتے تھے. آپ بتائیے بابا کو دکھا، بابا بڑے اچھا لگا، بہت اچھا ہے کوٹا فارمس، اتنا اچھا تینوں یادووں کا بنایا، کورموں کا بنایا، پانڈووں کا، ہمارا ترمورتی تو تھا. کہ بابا کہتے ہیں دیکھو شیو کو اڑا دیا ہے اور شیر بنا دیا، کیا کرتے ہیں لوگ. بابا واز آلویز ان अथॉरिटी थे जबरदस्त पावरफुल अथॉरिटी थे, क्योंकि रियलिटी थी ना बात, ये है बात भी ठीक भाई, तुमने उनको क्यों बना रखा, तुम त्रिमूर्ति का ब्रह्मा भी शंकर बनाओ ना, वो क्यों बना रखा है। इस प्रकार से बाबा पत्र लिखते थे और बाबा बहुत एक्यूरेसी थी, वो बाबा तीन शब्द याद कहते थे, बच्चे अर्लीएस्ट बेस्ट एंड चीपेस्ट, ये तीन शब्द याद रखो, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए, अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए और बहुत खर्चा भी नहीं होना चाहिए, पहले फ्री बनना चाहिए, फ्री नहीं बने तो कम से कम खर्चे में होना चाहिए। इस प्रकार से हम मेहनत करते थे बनाओ, और एक्यूरेसी हमने एक टाइटल बनवा के भेजा था मैं एक दिन वो किताब का, फर्स्ट टाइम हमने प्रिंटिंग की फोर कलर में, वो बाबा ने कराई, वो सर्व आत्मा का पिता और पीछे कुछ और था, उसमें नीचे स्लोगन लिखा, सतयुगी दैवी स्वराज आपका जन्म सदाधिकार है, अब नहीं तो कभी नहीं, है ना, उन दिनों में निकला था बाबा ने, उस वक्त नया नया निकला था, तो बाबा ने कहा ये बच्चे बेबीज हैं, क्यों बोला, इसमें गलती है कोई बताओ आप, सतयुगी दैवी स्वराज आपका जन्म सदाधिकार है, अब नहीं तो कभी नहीं, इसमें गलत है कुछ नहीं, ठीक है सब बोलो, गलत है। बाबा ने कहा ईश्वरीय जन्म सदाधिकार लिखो, जब तक ईश्वर के घर जन्म नहीं लोगे तब तक कैसे मिलेगा। एक्यूरेसी बाबा की बहुत ही लैंग्वेज की, ये लिखो इस प्रकार से लिखो, ऊपर आप जाएंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री पहले लिखा हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऐसा कोई शब्द लिखा था, बाबा ने कहा आर्टिस्ट को मंगाया फिलॉसफी काटो, गार्डली नॉलेज लिखो, हमारी फिलॉसफी थोड़ी है, हमारी गार्डली नॉलेज है नहीं, बाबा हर बात में एक्यूरेट करते थे। इस प्रकार से चलते रहे, एक चित्र, ये चित्र जो अभी बने हैं शिव किरणों वाला, पहले ये नहीं था, पहले हम क्या करते थे, बहुत एक हमने खुद हाथ से छिपाया पूरा ऐसे बड़ा गोल, उसमें बिंदु लगाया, बाद में फिर स्टार लगाया, फिर वो खत्म किया, बाबा ने कहा नहीं बाबा शिव बाबा ज्योति बिंदु है, और फिर हमने उसमें 32 गुण लिखे, बाबा ने कहा इतने, बाबा को दिखाया, पहले दिखाया नहीं, पहले वो मथुरा में गया एग्जीबिशन में, तो बाबा के पास फोटो आया कोई उद्घाटन करता हुआ, बाबा ने कहा तो बड़ा, बच्चों ने मुरली में कहा, बच्चों ने बहुत विचार सागर मथन किया है, 32 गुण लिख दिए बाबा के, तो बाबा ने कहा इतने गुण लिखने की क्या दरकार है, हम जब मिले मैं बाबा, एक तो हम आप कहते ज्योति बिंदु है इनसिग्निफिकेंट बिंदु, हैविंग नो लेंथ नो ब्रेथ नो विड्थ नो हाइट बिंदु, अगर हम उसके इतनी किरणें नहीं दिखाएंगे लोगों को इंप्रेशन कैसे पड़ेगा, इसलिए हमने इतनी 32 अब तो 16 है, पहले 32 गुण लिखते थे हम ऐसे ताकि लोगों को इंप्रेशन पड़े कि वो सागर है, तो सागर मैंने सो मेनी क्वालिटीज। इस प्रकार से चित्र बनते गए, एग्जीबिशन बनती गई, हम भी चलते रहे, और फिर बाबा अव्यक्त हुए, तो उसके बाद फिर हम 1984 में हमारे भ्राता जगदीश जी को फॉरेन जाने का बहुत जाने लगे ये, तो फिर हम मीटिंग में कहा गया कि आतम जी आप ये चित्र लिटरेचर का भी थोड़ा काम संभालो, वो भी संभाल लें, फिर ज्ञान अमृत थी उसकी एडिटिंग करना ये करना, कई प्रकार के कार्य जो शुरू हुए, बाबा ने जो काम किया, हमने कहा स्थूल में तो हमने सब जो डायरेक्शन मिली वो किया, बाकी आप कहते हो निरंतर याद करो वो तो उसका तो पुरुषार्थ चल रहा है। इस प्रकार से अब यहां पहुंचे हैं, काफी फासला तय कर लिया है, 55 साल तो बीत गए, दादियों को 75 साल बीते, लेकिन हम अपने को एक बात में खुशकिस्मत समझते हैं कि हम बने बनाए बाबा के पास आए, दादियों की तो भाई भी कोई 6 साल के कोई 8 साल की तपस्या की, बाबा ने बहुत उन पर मेहनत की, देखा जाए इतनी उनको तैयार किया, लेकिन हम जो हो सकता है पिछले जन्म में कुछ संस्कार थे, तो 20 साल की उम्र में आते ही ये सेवा में लग गए, और वो सेवा अब चल रही है, अब तो यानी बहुत समय बीत गया, समय अब कम है, अब बाबा कहते हैं बाप समान बनो, कोशिश कर रहे हैं कि हम सब बाप समान बने, व्यर्थ समाप्त हो और समर्थ हो, और आज देखो बाबा ने क्या कहा है मुरली में, पहली लाइन में सतो प्रधान पुरुषार्थ कौन सा है, केवल बाप की याद, कुछ भी कर लो अगर बाबा की याद नहीं है तो कितना आप प्रदर्शनियां करो ये करो वो करो बहुत मेहनत करो तो मनो कुछ कमी है, तो यही है, मैं तो ये कोशिश करता हूं चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते जो हमारा समय व्यर्थ जाता है, जो उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें कोई अटेंशन नहीं देनी पड़ती, उस चीज को हम इसमें समर्थ में कन्वर्ट करें। बाबा कहता कर्मातीत बनना है, एक तो 2 मिनट के लिए, बाबा कहता कर्मातीत बनना है, जैसे बाप बना हमको वैसे बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, घर जाना है, पूर्ण पवित्र बनना है, देवता बनना है, बात एक ही है, कर्मातीत बनना है, एकदम संपूर्ण पवित्र बनना है हम सब ब्राह्मणों को। उसकी पहली पहली स्टेज कौन सी है? फर्स्ट स्टेज कर्मातीत बनने की पहली पहली स्टेज है कि हम विकर्मा जीत बने। अब मैं समझता हूं हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म तो नहीं होता होगा, जो पाप कर्म है वो तो हमारा खत्म हुआ, अब होता नहीं होगा। सेकंड स्टेज है विकल्पाजीत, कोई विकल्प भी नहीं आना चाहिए, उसमें भी हम सब पास होंगे मैं समझता हूं। अच्छा, थर्ड स्टेज है बाबा कहते हैं व्यर्थ आतीत, अब नो व्यर्थ, अब बाबा कहते हैं ना मेरे बच्चों में विकर्म है ना विकल्प है, परंतु अब थोड़ा बहुत जो है व्यर्थ है, वो भी ज्यादा नहीं होगा, व्यर्थ व्यर्थ तो है नहीं, तो अब उस व्यर्थ को हमने समाप्त करना है। व्यर्थ भी बाबा कहते हैं भले ना हो लेकिन समर्थ भी बहुत कम है। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं मेरे बच्चों में अब व्यर्थ भी कम होगा, नहीं होगा शायद, बाबा को फेथ हम बच्चों पर। अब है क्या? केवल विकर्म नहीं, विकल्प नहीं, व्यर्थ नहीं, अब हमारा जो जीवन है थोड़ा साधारण है। अब साधारण माने विशेष होना चाहिए, जो बाबा का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष था। बाबा किसी को ऐसे देख भी लेते थे ना, उड़ जाता था, कहता मैं, मुझे बाबा ने दृष्टि दी। किसी पर ऐसे हाथ भी रख देते थे ना, उसको कितनी फीलिंग आती थी जबरदस्त। हर चीज विशेष थी, उठना बैठना खाना पीना सब विशेष, साधारण भला सिंपल था लेकिन विशेष था। तो हम बच्चों को भी मनसा वाचा और कर्मणा हमारा, हम ब्राह्मणों का विशेष होना चाहिए, जो हमसे मिले कहां ये विशेष आत्मा है। हम तो ये पुरुषार्थ करते हैं कि मन में जो समाप्त करता हूं, मन में बाबा की याद, बाबा 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 और कुछ नहीं। हर कदम पर हम जब चलते हैं ना चक्कर लगाते हैं, हर वो कहते हैं लेफ्ट राइट, हम कहते हैं बाबा बाबा, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, फरिश्ता हूं, देवता हूं, पूज्य हूं, जो बाबा ने स्वमान बताए हैं उन स्वमान को बार बार रिवाइज करते चलना। रिवाइज करेंगे तब रियलाइज होगा, एक बार हमने सोचा हम आत्मा कह दिया काम पूरा हुआ, नहीं, अगेन एंड अगेन गो ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग, और कोई संकल्प आए नहीं, मन में बाबा और बाबा की याद बस, और वाचा में बाबा का ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। आप तो सेंटरों पर रहते हैं या नजदीक हैं बहुत, यही ज्ञान जो मिले उसको ज्ञान दें बस, बाबा का ज्ञान। और कर्म में ये सब बाबा करा रहा है, हम बता दें आप, हमारा इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, छोटा सा गांव है, यहां कुछ नहीं मिलता, फिर भी देखो बाबा चला रहे हैं। हमारे आते हैं दिल्ली के लोग आते हैं, जब हमारे जो पेपर देते हैं वो कहते हैं भाई ये आपका, खुद उनको अनुभव होता है ये आपका काम नहीं, ये आपका बाबा ही करा रहा है, आई टेल यू, उनके मुख से निकलता है, रियली बाबा कराते हैं। हम कुछ ज्यादा प्लानिंग मत करें, इतनी ये प्लानिंग स्लानिंग कुछ नहीं, अगर हमारे बाबा की याद होगी सब काम ठीक होते चलेंगे। मैं तो कहता हूं लौकिक काम भी ठीक हो जाएंगे अगर हम बाबा की याद में रहकर करेंगे। हम तो वही करते हैं, अगर कोई काम गड़बड़ होता है जरूर हमारी कमी है, बाबा की याद नहीं है, मेरा तो अनुभव यह है। तो हम तो स्वयं बाबा की याद को और कुछ प्लानिंग नहीं करते, अपने आप बाबा ये सारा कुछ करा रहा है। तो आप भी, आप हैं भी इतने बाबा के सेंटरों पर रहते हैं, इतना सेवा करते हैं, बहुत 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 लकी हैं कि आपको ये चांस मिला है। कभी हमें सभी, हमको ही लोग देखते हैं हमको बाप समान बन करके, बाप के जो बाबा ने जो काम दिया है व्यर्थ ना, वो समय और संकल्प को सफल करो, उसको शुद्ध शुद्ध में लाओ, शुद्धता में लाओ। समय को सफल करने का भी आधार है यानी संकल्प, अगर हम शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते चले करते चले करते चले, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो फिर स्पार्किंग होगी, फिर ज्वालामुखी होगी। हम कहते ज्वालामुखी ज्वालामुखी, मैं बहुत डिस्कस करता हूं क्या ज्वालामुखी है, क्या चीज है। अगर जब तक पहले हमारी आत्मा जो चार्ज नहीं हुई है बैटरी शुद्ध संकल्पों के, क्योंकि पॉजिटिव से पावर आती है और प्योरिटी आती है, पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, बाबा ने कहा था स्वमान की माला बनाओ, मुरली में कहा है। जगदीश भाई कहते थे शुद्ध संकल्पों की धारा भाव भाव, और कोई संकल्प आए नहीं बीच में, यही ज्ञान चलता रहे। यही बाबा की जो पांच स्टेजेस बाबा ने बताई थी, ये बहुत वंडरफुल है। अगर पांच स्टेजेस में हम चक्कर लगाते रहे, इसे ट्रैवलिंग कहते हैं, ये ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग इन टाइम एंड ट्रैवलिंग इन स्पेस, यही याद है, यही यात्रा है बस। बाबा ने पहले कभी नहीं कहा था कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो डर लग अभी आया। पहले बाबा यात्रा कहते थे, याद कहते थे, अग्नि कहते थे। इसी प्रकार से हम इन चीजों को, बाबा की बातों को ध्यान में रख करके, स्वमान को बार बार सिमरण करके, अवश्य ही शुद्ध संकल्पों को जमा करके, अवश्य हम बाप समान बनेंगे और उसकी जो आशा है उसको पूर्ण करेंगे। ओम शांति। अब 3 मिनट साइलेंस।